महिलाओं को चार पति रखने की इजाजत क्यों नहीं देता इस्लाम? इस्लाम में मर्दों को चार शादियां करने की इजाजत है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यह अधिकार क्यों दिया गया है इससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। अक्सर यह भी पूछा जाता है कि मर्दों की तरह यह हक औरतों को क्यों नहीं मिला। क्या इसकी भी वाजिब वजह है? इस्लाम को लेकर जो बहुत सारी धारणाएं बन चुकी हैं, उनमें से एक यह है कि इस धर्म में पुरुषों को चार चार पत्नियां रखने की इजाजत है। फिर यहीं से नारी स्वतंत्रता के पक्षधरों को यह सवाल उठाने का मौका मिलता है कि इस्लाम महिलाओं को बहुविवाह की इजाजत क्यों नहीं देता। भारत में मुसलमानों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर जफरयाब जिलानी कहते हैं, इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसमें हर उस संभावना का समाधान निहित है जिसके उत्पन्न होने की जरा भी गुंजाइश रही है। मुश्किल यहां उसे न समझ पाने की या उसकी अच्छाइयों के दुरुपयोग की वजह से है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली कहते हैं, इस्लाम में चार शादी करने का आदेश नहीं है, बल्कि कुछ खास हालात में एक से अधिक लेकिन अधिकतम चार शादियां करने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ये शर्त भी है कि संबंधित व्यक्ति सभी पत्नियों के साथ न्याय करेगा। अगर इस्लाम में चार शादी करने का आदेश दिया गया होता तो सामान्यतया हर मुस्लिम पुरुष की चार चार पत्नियां होती। एक बात ये भी खास है कि कुरान के अवतरित होने से पहले विवाह की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं थी। कोई पुरुष कितनी भी शादियां कर सकता था, लेकिन कुरान में शादी को बेहद जरूरी बताया गया और वो भी निकाह के जरिए। विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक विवाह की अनुमति तो दी गई, लेकिन चार से ज्यादा नहीं। इस्लाम में बहुविवाह की इजाजत कब कब दी गई है, इस्लाम में किस तरह के काम करने की इजाजत है और किस तरह के नहीं, इसकी पांच श्रेणियां बटी हुई हैं। पहली, फर्ज यानी अनिवार्य। इस श्रेणी में आने वाले हर कार्य को करना इस्लाम धर्म मानने वाले हर शख्स के लिए अनिवार्य है। दूसरा, मुस्तहब यानी पसंदीदा। ऐसे कार्य जिन्हें करना अनिवार्य तो नहीं है लेकिन वे अंजाम दिए जाते हैं तो अल्लाह उनसे खुश होता है। तीसरा, मुबाह यानी जिसकी अनुमति हो। ऐसे कार्य जो फर्ज भी नहीं और ना ही पसंदीदा हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनकी अनुमति है। चौथा, मकरूह यानी घृणित या नापसंदीदा। ऐसे कार्य जिनकी अनुमति भी नहीं है और पसंद भी नहीं किए जाते, जिनसे बचा जाना चाहिए। पांचवा, हराम यानी निषेध। ऐसे काम जिसको अंजाम देने की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं है। ऐसे किसी कृत्य को अंजाम देने पर व्यक्ति गुनाह का भागीदार बनता है। एक से अधिक विवाह तीसरी श्रेणी में आता है, यानी न तो वह फर्ज माना गया है और ना ही पसंदीदा, बस परिस्थितियों के हिसाब से उसे अनुमति दी गई है। कुरान में बहुविवाह को लेकर जो सूरत आई है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि यदि तुम्हें भय हो कि तुम उनके बीच यानी अपनी पत्नियों के बीच न्याय नहीं कर सकोगे तो मात्र एक से विवाह करो। बहुविवाह की इजाजत क्यों दी? कुरान में एक निकाह को जरूरी कहा गया और विशेष परिस्थितियों में चार तक की अनुमति दी गई। सवाल उठता है कि यह अनुमति दी ही क्यों गई? दरअसल इसकी भी वजह है। कुरान जब अवतरित हुआ तब युद्ध चल रहे थे जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष मारे जा रहे थे, जिसकी वजह से विधवा औरतों की तादाद बढ़ रही थी। ये माना गया कि यह स्थिति आगे भी जारी रहेगी। अगर पुरुषों को एक ही शादी तक सीमित कर दिया गया तो विधवा औरतों के सामने अपनी बाकी जिंदगी काटने और बच्चों के पालन पोषण का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि मजबूरी में कुछ औरतें गलत कार्यों की ओर कदम बढ़ा दें जो समाज के हित में नहीं होगा। अगर पुरुष के लिए अधिकतम चार विवाह तक की अनुमति रहेगी तो विधवा विवाह का रास्ता खुला रहेगा, विधवा औरतें नई जिंदगी जी सकेंगी। मात्र एक विवाह की इजाजत होने पर अगर पत्नी किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है जिससे वो पति के साथ शारीरिक संबंध ना बना पाए तो दो तरह के संकट खड़े हो सकते हैं। एक तो ये कि पुरुष अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पराई औरत का रुख करेगा जिससे व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे यह कि पत्नी जब शारीरिक संपर्क के योग्य नहीं होगी तो वंश न बढ़ने का संकट खड़ा हो जाएगा। इसे देखते हुए भी एक से अधिक विवाह की अनुमति दी गई। अगर किसी पुरुष और स्त्री के बीच प्रेम हो गया तब ऐसे में अगर पुरुष पहले से ही एक शादी कर चुका है और दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं है तो नतीजा ये होगा कि प्रेमिका कभी पत्नी का दर्जा नहीं पा सकेगी। समाज में उसे किसी व्यक्ति की रखैल की हैसियत से ही देखा जाएगा और उसके पास पत्नी के अधिकार नहीं होंगे। यदि इस बीच दोनों से कोई संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसे पिता का नाम भी नहीं मिल पाएगा। इस्लाम मानने वाली महिलाओं को बहुविवाह की अनुमति क्यों नहीं? जब तब ये सवाल उठता रहता है कि जब इस्लाम में पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति है तो फिर इस धर्म की महिलाओं के लिए ये अनुमति क्यों नहीं? असल में एक व्यावहारिक सोच की वजह से इसकी इजाजत नहीं दी गई। ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि महिला के जो पति होंगे उनके मकान अलग अलग होंगे, वो अलग अलग शहरों राज्यों के भी हो सकते हैं। ऐसे में यह विवाद निपटाना आसान नहीं होगा कि महिला किसके साथ रहे। अलग अलग पतियों के साथ शारीरिक संबंध होंगे, ऐसे में जो संतान होगी उसके पिता का पता लगाना मुश्किल होगा। कई पतियों से शारीरिक संबंध बनाने से यौन रोग की आशंका भी अधिक होगी। इन्हीं वजहों से महिलाओं को बहुविवाह की इजाजत नहीं दी गई। कई मुस्लिम राष्ट्रों में है बहुविवाह पर रोक। भारत में तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाए जाने के बाद बहुविवाह पर रोक की मांग जोर पकड़ने लगी है। विधि आयोग ने भी केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें भारत में बहुविवाह पर रोक लगाने का सुझाव दिया गया है। तर्क यह है कि तुर्की और ट्यूनिशिया जैसे इस्लामिक देशों में बहुविवाह प्रतिबंधित है और आधा दर्जन से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्रों में यह मुद्दा वहां की अदालतों में विचाराधीन है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि बहुविवाह इस्लाम का अभिन्न अंग है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जब इस्लामिक राष्ट्र इसके दुरुपयोग को देखते हुए इस पर रोक लगाने की ओर बढ़ रहे हैं तो भारत में इसे प्रतिबंधित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।